पिछले पाठ में जो बात आई थी कि कारक जो है वह स्वयं विशेषण है और फल जो है वह भी स्वयं विशेषण है, तो विशेषण का विशेषण के साथ अन्वय नहीं होगा बल्कि विशेष्य के साथ होगा और वह विशेष्य भावना है, उसी में कारक का अन्वय किया जाएगा। इसी संदर्भ में कार्य कारण भाव भी कल्पित है शास्त्र में, वही बता रहे हैं कि एवं च विशेष्यतया कारकादि प्रकारक बोधम प्रति धातु जन्य भावना उपस्थिति हेतु। इस तरह से कार्य कारण भाव क्लिप्त है, माने कार्य कारण भाव कल्पित है। कार्य कारण भाव कई तरह का इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए कि कार्य कौन है, कार्य दल कौन है और कारण दल कौन है। तो विशेष्यतया कारकादि प्रकारक बोधम प्रति, ये है कार्यदल, और विशेष्यतया धातुजन्य भावना उपस्थिति हेतु, ये है कारण दल। और अर्थ क्या निकलेगा कि जिस शाब्द बोध में कारक आदि जो है प्रकार बने, माने विशेषण बने, उस शाब्द बोध में विशेष्य के रूप में धातु से जन्य जो भावना अर्थ है उसकी उपस्थिति कारण हुआ करती है। अर्थात जहाँ पर ये कारकादि भी हो और जहाँ पर धातुअर्थ भावना भी हो वहाँ पर कारकादि प्रकार बनता है और धातुअर्थ भावना जो है वहाँ पर विशेष्य बनता है। इस तरह से कार्य कारण भाव की कल्पना की गई। अब कहीं पर ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा कोई मानते हैं उनके लिए कहते हैं कि यत्रापि पक्ता पाचक इत्यादो भावना गुण भूता। ये तिंगंत स्थल के लिए तो ये ठीक है, लेकिन कृदंत स्थल में ये पक्ता में पच धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, पाचक में पच धातु से मूल प्रत्यय हुआ है, ये कृदंत शब्द है। और कृदंत शब्द में क्या होता है कि प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है और धातुअर्थ जो क्रिया है वह अप्रधान होता है। तो ये जो इन्होंने कहा कि भावना अर्थ में अन्वय होता है, तो वो अन्वय यहाँ कृदंत में होता नहीं है, इसलिए उसके लिए कहते हैं कि यत्रापि पक्ता पाचक इत्यादो, माने पक्ता पाचक इत्यादि कृदंत प्रयोगों में भावना गुणभूता, जहाँ पर भावना जो है गुणभूता होती है, माने गौण होती है, अप्रधान होती है, विशेषण होती है, तत्रापि वहाँ पर भी क्लिप्त कार्य कारण भावानुरोधात्, चूँकि कार्य कारण भाव की कल्पना शास्त्र में की गई है, क्या कि विशेषतया कारक आदि प्रकारक बोधम प्रति धातुजन्य भावनोपस्थित हेतु, ये जो कार्य कारण भाव की कल्पना की गई है इसके अनुरोध से, माने इसके प्रभाव से, इसके कारण जो है तस्याम एव अन्वयः इति अवशीयते। तस्याम एव मतलब क्रिया में ही जो है उसका अन्वय, किसका कारक का अन्वय जो है होता है, अवशीयते माने निश्चीयते, निश्चय किया जाता है इत्यादि भूषणे प्रपंचितम, या जो बृहद भूषण सार है उसमें ये बात, इस बात को प्रपंचित किया गया है, माने विस्तारित किया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। केचित तो भूतले घटः देवदत्तो घटम इत्यादो अन्वय बोध आकांक्षा निवृत्तियो अदर्शनात् न तद व्यतिरेकेन साधुत्व लाभ इत्याहु। ताकि कुछ आचार्यों का मानना है कि भूतले घटा, यह जो प्रयोग है इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर ऐसे ही देवदत्तः घटम, यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह क्रिया का प्रयोग नहीं होने से अन्वय बोध आकांक्षा की निवृत्ति का आदर्शन होता है, माने इसमें आकांक्षा रह ही जाती है कि भूतले घटः क्या अस्ति या अभवत या भविष्यति, इस तरह से आकांक्षा बनी ही रहती है, आकांक्षा की निवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही देवदत्तः घटम कहने से पश्यति अथवा अपश्यत अथवा द्रक्ष्यति, इस तरह से आकांक्षा बनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, तो आकांक्षा निवृत्ति का आदर्शन होता है, आकांक्षा निवृत्ति का दर्शन अभाव होता है, आकांक्षा निवृत्ति नहीं हो पाती है। इति न तद व्यतिरेकेन साधु लाभ, इसीलिए तत् से पकड़ लीजिए भावना को, और व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव, माने भावना का प्रयोग न हो, क्रियापद का अगर प्रयोग न हो तो साधुत्व ही नहीं होगा, जैसे भूतले घट में क्रियापद नहीं है, देवदत्तो घट में क्रियापद नहीं है, और इसमें इसलिए क्रियापद न होने के कारण आकांक्षा की निवृत्ति होती नहीं है, तो फिर इसमें साधुत्व भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। ये जो केचित्तु आहु कुछ आचार्यों ने कहा है, ऐसा जो कहा, इससे ये सिद्ध होता है कि दीक्षित तो स्वयं भट्टोजी दीक्षित या कौन भट्ट मानते हैं कि नहीं नहीं साधु तो ये होता है, लेकिन कुछ आचार्यों ने इसको असाधु मान लिया, इसलिए माना क्योंकि आकांक्षा की निवृत्ति बिना क्रियापद के नहीं होगी। इस तरह से 17वीं कारिका की व्याख्या करके अब 18वीं कारिका के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि स्वयं उपपत्तिम आह, स्वयं माने कौंड भट्ट जो है वो स्वयं उपपत्ति कहते हैं, आह माने कहते हैं, उपपत्ति माने युक्ति कहते हैं। किसमें युक्ति कहेंगे, माने क्रिया में ही अन्वय मानना चाहिए कारकों का, इसके लिए युक्ति देते हैं। यदि पक्षेपी बत्यर्थ कारकंच नयादिशु अन्वेति त्यजताम तरहि चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना, कहा कि इतना सब हमने प्रमाण बताया आपको, इसके बावजूद भी यदि हमारी बात आप नहीं मानते हैं, आप बति प्रत्यय का अर्थ, कारक, नय का अर्थ, इन सब का अन्वय जो है अगर क्रिया में त्यज्यताम त्याग करते हैं, तो फिर जो है ना सीधे कह दीजिए ना कि हम व्याकरण का नियम मानते ही नहीं हैं, व्याकरण की बात नहीं मानते हैं, हमारी जो मर्जी वो हम करेंगे। इसी भाव को इस कारिका में कहा गया। अब कारिका को देखिए, यदि पक्षेपी माने एक पक्ष में भी, माने कभी आपने क्रिया में अन्वय मान लिया और कभी नहीं माना, इस तरह से भी अगर आप करते हैं तो बत्यर्थ कारकंच नयादिशु, माने बती अर्थ में, कारक में और नय आदि जो आठ हैं उन सबों में अन्वेति त्यजत, तो भी अगर आप क्रिया में अन्वय का परित्याग करते हैं पक्ष में भी, माने कुछ अंश में भी अगर त्याग करते हैं, तो फिर चतुर्थ्याः स्पृहि कल्पना, तो स्पृह धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति होने का पाणिनि ने सूत्र बनाया है स्पृहे रिप्सिता, उसमें कहते हैं कि स्पृह धातु का अगर प्रयोग हो तो वहाँ पर चतुर्थी होती है, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो ये जो पाणिनि ने नियम बनाया है, तो फिर आप इस नियम को भी मत मानिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना कि स्पृह धातु में तो चतुर्थी की कल्पना करते हैं, कहते हैं कि पाणिनि का ऐसा सूत्र है। अरे पाणिनि का ऐसा सूत्र है तो बाकी जगह भी तो पाणिनि का ही सूत्र है ना, तो उसको बात को क्यों नहीं मानते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि यदि आप बत्यर्थ कारक नय इत्यादि का क्रिया में अन्वय का त्याग करते हैं, तो फिर ये भी त्याग कर दीजिए ना कि स्प्रिय धात में चतुर्थी नहीं होती है, वहाँ क्यों चतुर्थी मानते हैं व्याकरण को आधार मान करके। आगे स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कौन भर, कहते हैं कि पर्वतो बहनीमान भूमात महानसवत, कि पर्वत जो है वो बहनीमान है, बहनी कहते हैं अग्नि को, अमान माने युक्त, पर्वत जो है बहनीमान है माने बहनी से युक्त है, कैसे तो धूमात माने धूम होने के कारण वहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए महानसवत, महानस की तरह, बत माने तरह, महानस माने रसोई घर, रसोई घर की तरह, जैसे रसोई घर आजकल ना पक्का मकान हो गया है, पहले घास फूस का मकान होता था, तो जब रसोई करते थे ना, आग जलाते थे, उसका जो धुआं था वो छप्पर से होकर के, छत से होकर के निकलता था, तो उस धुएं को देख करके बाहर से ही लोग समझ जाते थे कि यहाँ पर रसोई चल रही है, आग जल रहा है। तो जैसे धुआं देख करके महानस में ये ज्ञान होता है कि महानस में आग जल रही है, आग है, उसी तरह से पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है तो उसको देखने से ये ज्ञान हो जाता है कि पर्वत बहनीमान है, इसी का नाम है अनुमान अनुमिति। तो कहा कि पर्वतो बहनीमान धूमात महानसवत, यहाँ पर भूतले न घट, ये उदाहरण दे रहे हैं, वो जो बति प्रत्यय कहा ना कारिका में, तीन कहा था, एक तो कहा था बत्यर्थ, ये मैं 18वीं कारिका की बात कर रहा हूँ, एक कहा था बत्यर्थ, दूसरा कहा था कारकम, और तीसरा कहा था नयादिशु। तो बति का उदाहरण दिया ये महानसवत, इसमें बति प्रत्यय हुआ है, तो ये जो बति प्रत्यय है ना महानसवत में, इसका भी अन्वय क्रिया में ही किया जाएगा। अब नय का उदाहरण दिया भूतले न घट, इसमें जो नय है इसका अर्थ का भी अन्वय हम क्रिया में ही करेंगे। ऐसे भूतले घट, भूतले या जो अधिकरण कारक है सप्तम्यंत है, इसका भी भूतल का अन्वय जो है क्रिया में ही करेंगे, तो इन सबों में क्रिया में ही अन्वय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पाणिनी का अनुशासन है, व्याकरण का ऐसा अनुशासन है। एवं आदिशु अनुशासन विरोधे भी यदि साधुत्वम अन्वय बोधश्च अभ्युपेयते, ताकि इस तरह का अनुशासन होने पर भी यदि आप क्रिया में अन्वय नहीं मानते हैं और इन सबों में साधुत्व मानते हैं, अभ्युपेयते माने स्वीक्रियते, यदि अनुशासन विरोधे भी माने शब्दानुशासन व्याकरण शासन से विरोध होने पर भी यदि आप इन सबों में साधुत्व मानते हैं और अन्वय बोध मानते हैं, माने क्रिया को छोड़कर के अन्य में अन्वय मानते हैं, तद ही चतुर्थ्या स्पृह कल्पना भी त्यजताम, तो फिर स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी की कल्पना जो आप करते हैं उसको भी छोड़ दीजिए ना, क्योंकि उसको क्यों नहीं छोड़ते हैं, वहां तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा शब्द का अनुशासन है, और यहाँ शब्दानुशासन होने पर भी वत्यर्थ में नयर्थ में इन सबों में आप अनुशासन की बात नहीं मानते हैं। वही कहते हैं अनुशासनानुरोध तौल्येन अर्धजर्तियम अयुक्तम इति भावा, तो जब आप अनुशासन मानते, ऐसा तो होगा नहीं कि एक जगह आप अनुशासन मानेंगे एक जगह अनुशासन नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो ये अर्धजर्तीय हो जाएगा। अर्धजर्तीय क्या है तो ये समझ लीजिए, ताकि एक गाय है और गाय जो है उसका आधा जो है वो दूध देने के लिए है और आधा खाने के लिए है, ऐसा हो सकता है संभव क्या कि आधा को खा लिया जाए और आधा को दूध देने के लिए छोड़ दिया जाए, ये असंभव है। इसकी दूसरी भी व्याख्या होती है अर्धजर्ती की, कि आधा हिस्सा जो है वह गाय का हिस्सा बुढ़ा है और आधा हिस्सा जो है वह जवान है, ऐसा होगा क्या कि जब होगा तो पूरी की पूरी गाय बुढ़ी होगी, पूरी की पूरी गाय जो है जवान होगी, तो इस तरह से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। तो कहा कि ये संभव नहीं है कि आधा कुछ मान लें और आधा कुछ मान लें, कहीं पर शासन माने कहीं पर शासन नहीं माने, अगर ऐसा मानते हैं तो ये अर्धजर्ती हो जाएगा, और अर्धजर्ती जो है वो अयुक्त होता है, माने युक्ति संगत नहीं होता है, इसीलिए अनुशासन का पालन करते हुए आप इन सबों में क्रिया में ही अन्वय को स्वीकार करिए। अब 19वीं कारिका का प्रारंभ होगा, एवं कर्त्रादो विहितानाम इन्यादीनाम क्रियैव अन्वयः इति आह, ताकि कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं जो कर्ता आदि अर्थकारक अर्थ में होते हैं, उनका भी अन्वय जो है वो क्रिया के साथ ही होता है। एवं कर्त्रादो विहितानाम इन्हीं आदि नाम, कर्ता आदि अर्थ में भीत जो इन्हीं आदि प्रत्यय है उसका भी क्रियैव अन्वयः, क्रिया के साथ ही उसका भी अन्वय होता है, इति आह ऐसा कहते हैं कारिका में। किस कारिका में? तो अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादि कर्म भी क्रिया संबध्यते तद्वत कित पूर्व्यादिषु स्थिता। अब इस कारिका में मैं स्वयं नहीं कुछ कह करके सीधे ग्रंथ की पंक्ति में मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने उसका अच्छे से अर्थ किया है। ये जो अभिग्रहा है ना, इसकी व्युत्पत्ति कहते हैं कि न विविच्य ग्रह ग्रहणम यस्याह सा अभिग्रहा गुणीभूता इति यावत्। अभिग्रहा का अर्थ है यहाँ पर गुणीभूता माने अप्रधानीभूता, तो अप्रधानीभूत ये अर्थ निकलता है अभिग्रह से। ये अभिग्रह से अप्रधानीभूत गुणीभूत अर्थ कैसे निकलेगा, उसके लिए व्युत्पत्ति बताया कि यहाँ जो विग्रह में बी है उसका अर्थ है विविच्य, और ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण, और अ जो है वह नए समास है तो उसका अर्थ हो गया न, तो न विविच्य ग्रह अर्थात ग्रहणम यस्या, माने विविच्य माने अलग से पृथक करके जिसका ग्रहण न हो उसको हम अविग्रहा कहते हैं। तो गुणीभूत जो होता है विशेषण जो होता है उसका अलग से बोध नहीं होता, उसका जब बोध होगा विशेषण का तो विशेष के साथ ही बोध होता है, इस तरह से अविग्रह का अर्थ जो है वह गुणीभूता हुआ। तो अभिग्रहागतादिस्था, ये अभिग्रहा जो गतादि में रहने वाला है प्रत्यय कौन, इन्यादि प्रत्यय, उनका जो है ग्रामादि कर्म के साथ अन्वय नहीं होता, क्रिया के साथ ही अन्वय होता है। कृतपूर्वी आदि सुस्थिता, जैसे कृतपूर्वी कतम में जो करण क्रिया है उसी करण क्रिया में इन्हीं प्रत्यय अर्थ का अन्वय होता है, ये कारक के साथ अन्वय नहीं होता। आगे देखते हैं, नौ विविच्य ग्रह ग्रहणम जस्या सा अभिग्रह गुणीभूता इति यावत। अभिग्रह की व्युत्पत्ति बता दी और अभिग्रह का अर्थ बता दिया। इसमें जो विविच्य कहा उसका अर्थ कर लेना है पृथक कृत्या। यथाच ग्रामम गतः इत्यत्र, अब ग्रामम गतः इस वाक्य में अक्तो प्रत्यार्थ गुणीभूता क्रिया ग्राम आदि कर्म भी संबद्ध थे। कहा कि ग्रामम गतः में गम धातु से अक्तो प्रत्यय हुआ है, यहाँ अक्तो प्रत्यय का अर्थ प्रधान है और गम धातु का अर्थ जो है तो प्रत्यार्थ गुणी भूतापि क्रिया ग्रामादि भी कर्म। हाँ, यहाँ गतः में गम धातु अर्थ जो है गमन और अक्तो प्रत्यार्थ है कर्ता अर्थ। इन दोनों में अक्तो प्रत्यार्थ जो गुणीभूत क्रिया है माने गमन क्रिया जो अर्थ है वह ग्रामादि कर्म भी संबद्ध थे। वो ग्रामादि कर्म जो है ग्रामम इसके साथ उसका संबंध होता है, माने क्रिया के साथ ही कर्म का संबंध होता है, कारक का कारक के साथ संबंध नहीं होता है। यथाच ग्रामम गता इत्यत्र, इसमें अक्तो प्रत्यार्थ गुणीभूताप किया, अक्तो प्रत्यय का अर्थ जो है कर्ता अर्थ, उसका जो गुणीभूत क्रिया है माने और उसका जो विशेषण क्रिया है गमन क्रिया, वह गमन क्रिया ग्रामादि कर्म के साथ अन्वित होता है संबद्धते। तथा कृतपूर्वी कटम इत्यत्रापि गुणभूता इन्यादि, इसी तरह से कृतपूर्वी कटम में इन्हीं प्रत्यय हुआ है और उस इन्हीं प्रत्ययार्थ का भी जो है क्रिया में ही अन्वय होता है। गुणीभूता इन्या, यहाँ भी कृतपूर्वी कटम में गुणभूता क्रिया है कौन, करण क्रिया, उसका भी जो है अन्वय होता है इन्याद भी, इन्यादि प्रत्यार्थ के साथ अन्वय होता है। इस तरह से व्याख्या करते हुए आगे जो ये बात बताने वाले हैं वो ज्यादा व्याख्या है, तो आज का पाठ यहीं पर स्थगित करते हैं।